Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
जो सुनने में तो बहुत बढ़िया लगे, समझ में आ जाए, पर विचार करने के बाद झूठी सिद्ध हो, उसका नाम कुतर्क है। तो कुतर्क कुतर्क करते हैं। जगत मतलब संसार के विषय में मोहाय हतधिय, जो भ्रम में डालने वाला है, जिनकी बुद्धि मारी गई है, कांश्चित मतलब ऐसे कुछ एक लोग हैं, मुखरयति ऐसे लोगों को यह कुतर्क बकवासी बना देता है। खलु मतलब लेकिन, अयम मतलब यह जो कुतर्क है, अनवसर दुस्थ, अनवसर दुस्थ का अर्थ है अवकाश रहित है, बिना अवकाश के ही, बिना कारण से ही इस प्रकार का वे तर्क वितर्क किया करते हैं। ये तो हो गया आपका एक एक पद का शब्दार्थ। अब इस पर विचार करते हैं। तो पहला शब्द है किमी है, यह शब्द का अर्थ होता है चेष्टा। यह चेष्टायाम धातु से यह शब्द बना है। ये मतलब उसकी कौन सी चेष्टा, इच्छा और प्रयत्न के बीच में चेष्टा होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी रसगुल्ला नहीं है, तो रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, पहले रसगुल्ला विषय ज्ञान होगा, क्योंकि तो नियम है जानाति इच्छति यतते करोति। जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य की भूमिका है जानाति, पहले सामान्य ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद इच्छा होती है, इच्छा के बाद चेष्टा प्रयास होगा, इसके बाद कार्य को संपादित करते हैं। तो हमें रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला का ज्ञान है, मन में इच्छा हुई, इच्छा होने के बाद फिर चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास के बाद बाजार से ले आकर के फिर हम जो है उसको खाते हैं। परंतु जो परमात्मा है, परमात्मा के विषय में शास्त्र कहता है आप्त काम, परमात्मा के अंदर कोई कामना नहीं। जब आप्त काम है तो उसके अंदर चेष्टा इच्छा असंभव है, अल्पज्ञ के अंदर चेष्टा होती है। यह जो तर्क है कि उसने किस इच्छा से, किस चेष्टा से संसार को बनाया, यही खंडित हो जाता है। ये मनुष्य अपने ढंग से चिंतन करता है कि जैसे हम कोई भी जब काम करते हैं तो काम करने के पहले इच्छा करते हैं। जैसे आपको एक मकान बनाना हो तो मकान बनाने के पहले मन में इच्छा होगी, इच्छा के बाद कारीगर को बुलाएंगे, बुलाने के बाद सामग्री एकत्रित करेंगे, तब जाके मकान बनेगा। इसी प्रकार से सोच रहा है उस परमात्मा ने जब संसार को बनाया तो बनाने के पहले उसने किस प्रकार से इच्छा किया। जो पहाड़ की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, धरती इतना समतल है, इसको बनाने के पहले उसने किस प्रकार से संकल्प विकल्प किया, इस प्रकार से तर्क वितर्क करता है। इसके बाद वह किम काय, उसका शरीर कैसा है, बिना शरीर के इच्छा संभव है, इच्छा के बाद में सोता उसका शरीर कैसा है। यदि देखा जाए तो भगवान की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो आप्त काम सत्य काम है, श्रुति कहती है। भगवान के उपासक भक्त भी सत्य काम होते हैं, स्वयं श्रुति माता है ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो नुधावती, ऋषियों के वाणी का अनुकरण पदार्थ करते हैं। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, बहुत हम आपको वर्तमान दृष्टांत देते हैं कलयुग का। जब बौद्धों के साथ सनातन धर्म का साक्षात्कार हो रहा था कि जगत का कारण परमात्मा है, चैतन्य है कि शून्य, बौद्धों का पक्ष था कि संसार का कारण शून्य है, शून्य से संसार उत्पन्न हुआ। पर कुमाइल भट्ट कहते थे कि जगत का कारण चैतन्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है। बहुत दिन साहत्याश चलता रहा, जब निर्णय नहीं हो पाया तो बौद्ध राजा ने कहा कि शास्त्रार्थ का निर्णय मैं कल करूंगा। और बौद्ध राजा ने चुपके से घड़े में काला नाग रख करके और प्रातः काल जब सत्र प्रारंभ हुआ तो सभा के बीच में रखवा दिया। दोनों पक्षों से निवेदन किया कि आप अपने शास्त्र से, ज्ञान से, अनुभव से बतलाइए किस घड़े में क्या है। जो सही सही बतला देगा वह जीत जाएगा, नहीं बतलाने वाले की हार हो जाएगी। चूंकि राजा बौद्ध था इसलिए बौद्ध पंडितों को खबर लग गई थी कि उसमें काला नाग रखा है। बस जैसे राजा घोषणा किया, घोषणा करते ही तुरंत बौद्ध पंडित चिल्लाकर बोले इसमें काला नाग है। कुरमाइल भट्ट ने सोचा यदि मैं भी हां में हां मिला दूं तो क्या बोले कि पहले इन्होंने बोला और बाद में आपने बोला था आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। कुछ देर तक नहीं बोले। जब राजा ने कहा कि आप सोचते कि आप बतलाइए क्या है, कुमाइल भट्ट ने कहा सोच विचार कर इसमें जो है खिलता हुआ कमल का फूल है। राजा जोर से हंसा, कहा कि आज तो हमारी विजय हो गई। रानी थी सनातनी धर्मपत्नी, बहुत दुखी हुई कि क्या इन्होंने कह दिया, इन्हें कहना था काला नाग। कुमाइल भट्ट ने कहा आप घड़ा खोल के देखिए पहले इसमें क्या है। जैसे ही घड़ा को खुलवाया उसमें खिलता हुआ कमल का फूल। राजा को बड़ी हैरानी हुई, हमने स्वयं रखवाई थी इसमें काला नाग की जगह काला फूल कहां से आ गया। उसने पूछा कि अदला बदली कैसे हो गई। कुमाइल भट्ट ने कहा कि मुझे मालूम था इसमें काला नाग है, परंतु हमने इस काले नाग की भावना करते करते परमाणु तक ले गया और परमाणु को हमने चैतन्य में विलीन कर दिया। जगत जब नष्ट हो होता है तो परमाणु रूपता को प्राप्त होता है और परमाणु जो है परमात्मा में विलीन होता है। परमाणु का आकाश का आधार है परमात्मा, तो उस परमात्मा तक पहले ले गया, उस परमात्मा में संकल्प किया, वहां से संकल्प करने के बाद धीरे धीरे परमाणु वेणु के क्रम से ये जो खिलता हुआ कमल बन गया। जब ऋषियों के वाणी को, कुमाइल भट्ट के वाणी को अनुकरण किया, पदार्थ पदार्थ मतलब कमल का फूल, ये कलयुग की घटना है, इतनी उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी, भावना संकल्प था कि संकल्पानुसार उस काले नाग को परिणत होकर फूल बनना पड़ा। तो जब भक्तों में इतना सामर्थ्य है तो परमात्मा अपने संकल्प से क्या नहीं कर सकता है। पर अज्ञानी जी तरह तरह के शंका करते हैं। पहले लोग महाभारत के ऊपर बहुत शंका करते थे। महाभारत में वेदव्यास ने जो लिखा है कलयुग का वर्णन, भागवत में भी है कि अट्ठशूला जनपदा कामिन्य के सुलिन्य। तो अट्ठशूला का अर्थ नहीं लगता, तो अट्ठशूला चीज क्या होती है। आज सबको लग रहा है अट्ठ बोलते हैं अटारी, जो बड़ी बिल्डिंगें होती है ना 10-20-50 मंजिल की, उस पर देखना त्रिशूल की तरह से वो बना रहता है ताकि ऊपर से बिजली को कैच कर सके। पर उस जमाने में जब महाभारत लिखी गई तो किसी को समझ में नहीं आया, वहां पर लाल चिन्ह लगा दिया। पर आज प्रत्यक्ष हो गया कि गगन चुम्बी जो इमारतें हैं उसके ऊपर अट्ठशूला मतलब ऊपर शूल लगाते हैं। तो ऋषि लोग तो लिखते हैं पर वर्तमान में समझ में नहीं आता है, कालांतर में प्रत्यक्ष होता है। कामिन्य के शून्य भी लिखा है, प्राचीन काल में स्त्रियां केश को काटती नहीं थी। केश काटना मतलब कि अपने सौभाग्य को नष्ट करना, ऐसा माना जाता था। पर आजकल तो इस शोभा बन गया ना, केश को छाटना काटना, उसमें जो है शूल मतलब कि वो नहीं लगाते हैं, वो जो ब्यूटी पार्लर में जाकर वो सब होता है। तो उस समय किसी ने भरोसा नहीं किया, वेदव्यास ने क्या लिख मारा, पर आज प्रत्यक्ष हो गया। तो ये जो ऋषियों की वाणी अमोघ हुआ करती है। मांडुक उपनिषद में आता है देवा शेषस भावोयम आप्त कामश काष्प्रिया। उस परमात्मा को कुछ भी चाह नहीं है, वह तो जीव के हित के लिए संसार को बनाया। किम काया, उसका शरीर कैसा है? यदि हम ऐसा कहें कि वह अपने शरीर से संसार को उत्पन्न किया तो शंका हुई कि उसका शरीर किसने उत्पन्न किया। ईश्वर को भी शरीरी मान ले अपनी तरह 3.5 हाथ का, तो शंका होगी कि उस शरीर को किसने बनाया, फिर उसके शरीर को किसने बनाया, तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अनवस्था दोष हो जाएगा। और यदि कहें अपरिच्छिन्न तो कहता है कि वो शून्य है, जब दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस तरह से उसके शरीर के विषय में शंका करते हैं। कदाचित मान भी लें कि उसका कोई शरीर है, संकल्प है, तो फिर शंका करते हैं कि किमु पायः, कौन सा औजार। जैसे जुलाहा जब कपड़ा बनाता है तो कपड़ा बनाने के लिए एक लकड़ी विशेष होता है, और जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसके लिए चाक चीवर होते हैं, उस पर रखकर घड़ा को बनाता है। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी जो दुनिया है उसको किस औजार हथियार से बनाया। इस प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं। किमाधारः, जब बनाया तो उसका आधार क्या बना है, किस जगह बनाया, कहां बैठकर, ये भी शंका करते हैं। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव है, तो वहां पर एक बार मैं गया हुआ था, तो बहुत से लोग वहां पर तर्क वितर्क कर रहे थे कि पुराणों में चर्चा है कि सागर का मंथन हुआ, मंथन के बाद हलाहल विष निकला, तो हलाहल विष को भगवान शंकर ने पान किया तो उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो नीलकंठ तो ये हिमालय की तलहटी में ऋषिकेश में है, और समुद्र तो बहुत दूर है, इसे बंबई में समुद्र है, तो भगवान शंकर वहां बैठ के हलाहल विष का पान किए कि यहां पान की, तरह तरह की जो शंका करते हैं। भाई भगवान समर्थ थे, चाहे वहां से पान कर ले चाहे ऋषिकेश नीलकंठ से कर ले, क्या फर्क पड़ना है, परंतु अज्ञानी शंका करता है। तो वहां पर जो नीलकंठ महादेव, वहां फोटो ही बना रखा है कि समुद्र का मंथन हो रहा, हलाल विष निकल रहा, वाम हस्त भगवान विष पान कर रहे हैं। तो जो नीलकंठ भगवान, उनका आधार क्या बना, जहां पर बैठ के हलाल का पान किया, ऐसे उस परमात्मा ने किस आधार पर कहां बैठ करके संसार को बनाया। यहां भी शंका होगी कि जिस आधार पर बैठकर संसार को बनाया वह तो उसके पहले मौजूद था, उसको किसने बनाया, शंका होगी ना। तो इस तरह के तर्क करते हैं। इसके बाद आता है किमु उपादानः, क्या उपादान। जैसे घड़ा बनाने के लिए उपादान है मिट्टी, कपड़ा के लिए सूत, वैसे ही संसार बनाने के लिए उपादान क्या, सामग्री क्या थी जिससे बनाया। इस प्रकार से बेचारे तर्क वितर्क करके हतधियः, उनकी बुद्धि कहते कि नष्ट हो जाती है, तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं। हालांकि परमात्मा के स्वरूप को स्वयं ही बतला दिया है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वह सब में बैठा हुआ है, सब कुछ उसमें है, जैसे आकाश है। इस आकाश में ये जो है ना बंबई नगरी निर्मित है, और इसके बीच भी बंबई आकाश है, आकाश के अंदर बंबई है, अब बंबई के अंदर भी आकाश है, दोनों। आकाश न हो तो बंबई बन नहीं सकता है, और बनने के बाद भी उसके अंदर भी आकाश है। इसी प्रकार से परमात्मा बाहर भी है, भीतर भी व्यापक है, सर्वत्र है। इसलिए हमारे यहां कहा है कि मातृ देवो भव, माता में साक्षात परमात्मा की भावना करें। यदि हम निर्गुण निराकार अपरिच्छिन्न परमात्मा का अपने मन बुद्धि से अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी अनुभव नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास जो भी यंत्र है वह माइक है, पांच भौतिक है। जो हमारे यंत्र है ना, आंख नाक कान त्वचा हस्त पाद पायुपस्थ या मन बुद्धि, ये सब जो है ना माइक है। माइक होने के नाते ये माइक वस्तुओं का ही अनुभव कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। और परमात्मा अमाइक है, इसलिए अमाइक तत्व मन बुद्धि का विषय नहीं होता है, तरह की शंका होती है। इसलिए उसी परमात्मा ने क्या किया, आपके हित के लिए तत् सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राविशत, इस संसार माइक संसार को बनाकर उसमें प्रविष्ट हो गया। तो यदि आप निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं तो शास्त्र कहता है कि आप अपनी मां को देख रहे हैं, पिता को देख रहे हैं, उनमें भी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं परमात्मा बुद्धि से। कल हमारे गिरीश भाई ने बड़ा अच्छा शंका किया था, ये सबका शंका है कि जो है पत्नी तो पति को पति देव माने, पति परमेश्वराय नमः दृष्टि रखे, परंतु पति क्या करे, है ना। ये शंका एक बार हमारे कैलाश में पूज्य महाराज श्री दशम पीठाचार्य से विद्यानिधि जी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। भगवान शंकर की सारी दुनिया पूजा कर, वो भी आंख बंद करके बैठे हैं। तो महाराज श्री ने उत्तर दिया था अपने स्वरूप का, परंतु उस समय बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, उसमें बाल बुद्धि थी हमारी, करीब 20 वर्ष पुरानी घटना होगी कि स्वरूप क्या है। यदि ऐसा को उत्तर दे कि भगवान शंकर अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, खैर आप लोग तो समझदार है समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा स्वरूप क्या होता है। तो पति जो है ना अपने स्वरूप का सुमिरन करे, चिंतन करे, उपासना करे। यहीं पर आता है कि वह जो पुरुष है ना पूर्णत्वात पुरुष, पत्नी में पुरुष में व्युत्पत्ति अलग अलग है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति है जो वैदिक व्याख्यान है कि पूर्णत्वात पुरुष, ये पुरुष क्या है, पूर्ण है, जैसे आकाश परिपूर्ण है, व्यापक है। तो पुरुष जब परिपूर्ण है तो यह अपने परिपूर्ण आत्म स्वरूप का चिंतन करता है, और पत्नी जो है पति में जो है परमेश्वर का दर्शन करती है। अब बालक होगा, वो बालक जिसका शादीशुदा नहीं हुआ है वो माता पिता में परमेश्वर का दर्शन करता है। तो सर्वत्र आप परमेश्वर की दृष्टि से उसको उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु नास्तिक तर्क वितर्क के जाल में पड़ करके पहचान नहीं पाते हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया स्वाध्याय में तर्का प्रतिष्ठाना सूत्र आया था ना, उसमें स्पष्ट कर दिया था कि तर्कों की प्रतिष्ठा नहीं। यदि आप एक तर्क से सिद्ध करते हैं कि जगत का कारण शून्य है, दूसरा आएगा खंडन करके कहेगा क्षणिक विज्ञान है, तीसरा बोलेगा प्रधान है, चौथा खंडन कर देगा कि ईश्वर कारण है, तो तर्कों की प्रतिष्ठा कभी नहीं होती है। ये तर्क क्या है, दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार जानते हैं ना, दुधारी मतलब कि दोनों तरफ धार होते हैं। यदि आप तलवार चलाने में कुशल हैं तब तो दुधारी तलवार से शत्रु का संहार कर सकते, अन्यथा मनुष्य अपना ही संहार कर लेता है। इसी प्रकार से तर्क के द्वारा हम परमात्मा को समझ भी सकते हैं और तर्क के द्वारा भटक भी सकते हैं, इसलिए तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती है। देवी पुराण में आता है ज्ञान नाम पिहिसा देवी भगवती बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। कितना सोच समझ के वेदव्यास ने शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञान नाम पिहि चेतांशी भगवती हिसा, हिसा मतलब सा मतलब वही वेद प्रतिपाद जो चैतन्य है जो भगवती के पिंड में देवी के पिंड में है। ज्ञान नाम पी ज्ञानियों के चेतांशी चित्त को बलादा कृष्ण मोहाय बलपूर्वक मोह में डाल देती है। देखो मूर्ख लोग ज्यादा जो है ना भ्रमित नहीं होते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं। आप किसी सामान्य व्यक्ति को बतला दो तो बस एक पिंड को भगवान शंकर मानकर जल चढ़ा तो बिल्कुल सच्चे दिल से करेगा, जरा संशय विकल्प तर्क वितर्क नहीं होगा। पर पढ़े लिखे को बोलो तो तरह तरह का तर्क करेगा। इसीलिए वेदव्यास ने कहा कि ज्ञान नाम पी चेतांशी, ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक तरक बितरक के जाल में वही देवी माया देवी फंसा देती है ताकि संसार चलता रहे। मान लो कोई आपके घर में बहुत दुधारू गाय हो, दुधारू गाय का रस्सी खुल गया, अब बेचारी आगे भगने लगी तो आप क्या करेंगे? उसको बढ़िया घास डाल करके रोक देंगे। ऐसे ही ज्ञानी क्या है ना, दुधारू है गौ के समान। तो महामाया क्या करती है, तरक बितरक के जाल में मोह में फंसा देती है ताकि जो है ये संसार का व्यवहार चलता रहे, परंतु जो प्रौढ़ होगा वो तरक बितरक से आगे निकल सकता है। काश्चिन मुखरेति, यहां काश्चिन शब्द का प्रयोग है, मतलब सबको नहीं, किसी किसी को यह तरक बितरक मुखर बना देता है। काश्चिन मुखरेति। अब देखो अगले छठवें श्लोक में विचार किया है कि वास्तव में ये जो नास्तिक दार्शनिक हैं ये किस प्रकार से चिंतन करते हैं और जगत का कारण क्या मानते हैं, इस बात को छठवें श्लोक में बतलाया है। नास्तिक कुल मिला के छह दर्शन है, छह में से पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन। बौद्ध के चार भाग हैं, माध्यमिक, सौत्रांतिक, योगाचार, वैभाषिक। तो शिष्ट नास्तिक तो आपके जैन बौद्ध है और अशिष्ट है चार्वाक। अशिष्ट मतलब कि कुछ भी नहीं मानना, अशिष्ट का अर्थ होता है कि लोक व्यवहार को भी तिलांजलि दे देना। जैसे वो कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम। ये अशिष्ट नास्तिक है, जब तक जीना है तब तक खूब ऋण लो बैंक से और मौज करो खाओ पियो, मरने के बाद कौन देखा स्वर्ग, यही शरीर स्वर्ग यही नरक। हमको बहुत लोग ट्रेन में ऐसे बोलते भी मिले, कई लोग मिले कि कहीं स्वर्ग नहीं कहीं नरक नहीं, बस यही शरीर स्वस्थ हो तो स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, और यही बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल में तो नरक है। इससे बाहर कुछ स्वर्ग नरक नहीं, न कोई ब्रह्म है न परमात्मा है। ये बेचारे हैं अशिष्ट नास्तिक, मतलब कि शरीर में ही केवल दृष्टि केंद्रित रहती है। आजकल की सरकारें भी ब्याज पर ब्याज, कर्जा के ऊपर कर्जा ले रही है। यदि पूछो कि तुम्हें चुकाना पड़ेगा, बड़ा महंगा पड़ेगा, तो क्या बोलते हैं, हमें चुकाना नहीं है, बस लेते जाओ अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से। ये है आपके नास्तिक। दूसरे शिष्ट हैं जैन बौद्ध, इनका कहना है कि संसार जो है परमाणुओं की पुंज से बना, शून्य से बना, क्षणिक विज्ञान से बना। देखिए जैन दर्शन मानता है कि परमाणुओं के पुंज से संसार बना, ईश्वर नामक कोई पदार्थ नहीं। बौद्ध भी यही मानता है ईश्वर नामक कोई चीज नहीं है, शून्य से यह संसार बना। ये शिष्ट नास्तिक हैं। ये लोग इतना मानते हैं कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, इनकी मान्यता है। इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए, बढ़िया कर्म करना चाहिए। बढ़िया कर्म करोगे सुखी रहोगे और घटिया कर्म करोगे तो दुखी रहोगे। इस प्रकार से शिष्ट नास्तिकों जैन बौद्ध की मान्यता है और वास्तविकता भी है कि इंसान जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। एक बार अकबर भरी दरबार में बीरबल को एक तमाचा जोर से मारा। बीरबल बहुत होशियार थे, उन्होंने पीछे मुड़ के वजीर को मारा। वजीर बेचारा आंख लाल लाल करके देखने लगा, बोला कि तू देखता क्या है, इसको आगे बढ़ा, इसको जो है साहिबा तक पहुंचाना है। अब वजीर दूसरे को मारा, दूसरा तीसरे को, चौथे को, फिर दीवान को लगा। दीवान तिलमिला गए, बोले क्यों मारा मुझे, बोले कि अकबर ने बीरबल को दिया, बीरबल ने वजीर को, और इस तमाचे को साहिबा बेगम के पास पहुंचाना है राजमहल में। अब मरा दीवान जी सीधे सीधे जो है राजमहल गए, जाके अकबर की धर्मपत्नी को एक तमाचा जोर से मारा। बोली ये क्या तू कर रहा, बोले ये पति देव ने आपको दिया है, आएंगे तो उनको वापस करना। बोले ठीक है भाई। रात को जैसे अकबर आए बस तमाचा लग गया। तो ये संसार ऐसा ही है, जैसा आप करते हैं ना वैसा ही मिलता है। ये मान्यता जैन बौद्ध आस्तिक सिख दार्शनिकों की है। इसका उच्चारण कर ले कम से कम, व्याख्यान तो कल हो पाएगा।
अजन्मानो लोका किमवयवबन्तो जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवर संशेरत इमे।
वे कहते हैं कि अजन मानो लोका किमा अवयवंत, अवयव मतलब परमाणुओं के अवयव से पुंज से बिना उत्पत्ति के ये जगत बना है, उनकी मान्यता है। जैसे कि हमारे शरीर का अवयव है हस्त पाद पायु पस्त अवयव से शरीर बना, ऐसे परमाणुओं के द्वारा उसके पुंज पृथ्वी है, वायु भी एक परमाणु का पुंज है, अग्नि भी परमाणु का पुंज है। जिस प्रकार से एक घड़ा जो है मिट्टी के पुंज से समूह से बनता है, इसी प्रकार से संसार भी परमाणुओं का अवयव का पुंज है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो शंका करते हैं जगत्ताम अधिष्ठारा तारा किम, ये जो भव विधि है उत्पत्ति विधि, उस या उत्पत्ति विधि परमात्मा का तिरस्कार करके क्या संभव है? कहते हैं संभव है। यह जो अनिश जीवात्मा यह भी क्या संसार को बना सकता है? तो कहते यह अनिश जो जीवात्मा है सामर्थ्यहीन, यह भी संसार को नहीं बना सकता है। इस प्रकार से मन बुद्धि वाले तरह तरह की शंका करते हैं उस तत्व के ऊपर। अब कल विचार करेंगे, समय हो गया। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।